राम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जितना दिन कौरवों का पांडवों का युद्ध करने में कुरुक्षेत्र में व्यतीत हुआ, बड़ा भारी राजाओं के मन में भय था, कौन जीतेगा, कौन मरेगा, कौन जिएगा, किसके हाथ में राज्य रहेगा, वो अभी तक समाप्त नहीं हुआ। युद्ध समाप्त हो गया पर वो असमंजसता, वो संशय, वो समाप्त नहीं हुआ। कारण क्या हुआ कि युधिष्ठिर महाराज सब कुछ छोड़कर जाने के लिए तैयार थे तो उनको मनाने में लगे हुए हैं। सब लोग बड़ी ज्ञान की अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, चाहे नकुल हो, सहदेव हो, छोटे से छोटा हो, चाहे युधिष्ठिर महाराज हो, भाई भाई सब न्याय संगत बात बोलते हैं। द्रौपदी बोलती है, बीच में देवस्थान नाम के ऋषि ने भी बात कही, शंख और लिखित का इतिहास सुनाया। शंख और लिखित का इतिहास तो वेदव्यास जी ने बताया कि दंड देने का अधिकार राजा को होता है। एक भाई ने एक भाई का फल खा लिया वृक्ष का बिना पूछे, तो राजा के पास गया। राजा ने कहा मैं क्षमा करता हूं, आप ब्राह्मण होके नहीं मुझे दंड दे, तो हाथ कटा दिए। खुश हो गया वो, मुझे दंड मिल गया मेरे पाप का। तो फिर उसके बड़े भाई के पास हो गया और उस बड़े भाई ने कहा देख भाई तेरे हाथ कटे हैं, कोई बात नहीं, इस नदी में स्नान कर ले। वो प्रसन्नता से स्नान करने गया और वापस हाथ आ गए, क्योंकि क्या ये दंड तो तुम ही दे देते कि मैं क्यों देता, मेरा दंड देना ठीक नहीं है। तो व्यास जी महाराज से यह बातें होती रही तो व्यास जी ने कहा कि यदि ऐसे दंड देने वाले राजा लोग जंगलों में जाकर बैठ जाएंगे तो फिर प्रजा का क्या होगा। तो व्यास जी की बात सुनकर युधिष्ठिर ने कहा कि भगवान इस पृथ्वी के राज्य और तरह तरह के भोगों से मेरे मन को प्रसन्नता नहीं है, किसी को दंड देना यह भी मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे तो मेरा शोक अंदर से खाए जा रहा है। देखो आप इन स्त्रियों का करुण क्रंदन, किसी का पति मर गया, किसी का पुत्र मर गया। हे व्यास जी महाराज, स्त्री के लिए सबसे बड़े सहारे दो होते हैं, एक पति होता है, दूसरा उसका पुत्र होता है। यहां तो किनी किनी अबलाओं के पति और पुत्र दोनों ही चले गए, कैसा विलाप हो रहा है, इस विलाप से मुझे तनिक भी चैन नहीं है। व्यास जी ने कहा मेरी बातों को तुम ध्यान से सुनो, ये लोग ज्ञान से रो रहे हैं कि अज्ञान से रो रहे हैं। जो लोग मारे गए हैं वे तो अब किसी भी प्रकार रोने से या बहुत बड़े यज्ञ करने से भी आ नहीं सकते, और न कोई ऐसा वीर पुरुष, ज्ञानी पुरुष, महापुरुष है जो उन्हें लाकर दे दे। बुद्धि या शास्त्राध्ययन के द्वारा असमय में ही किसी विशेष वस्तु को पा लेना मनुष्य के बस की बात नहीं है। कभी कभी तो मूर्ख मनुष्य को भी उत्तम वस्तु मिल जाती है। वास्तव में कार्य की सिद्धि में काल की प्रधानता होती है। उनका काल खत्म हो गया, चले गए, तुम्हारा काल खत्म हो जाएगा, तुम भी चले जाओगे। जितनी कलाएं हैं, मंत्र हैं, औषधियां हैं, जब आदमी का भाग्य खराब होता है कोई साथ नहीं देता, समय की अनुकूलता होने पर सब सौभाग्य के साथ रहते हैं, वे ही सफलता और वृद्धि के निमित्त बनते हैं, और समय आने पर जैसे मेघ बरसते हैं सबको अच्छे लगते हैं। बिना समय के वृक्षों में फल फूल कभी नहीं लगते, तथा जब तक अनुकूल समय नहीं आता तब तक पशु पक्षी सर्प हाथी हिरणों आदि में बड़ा उत्साह देखा जाता है, और जब अनुकूल समय चला जाता है तब पशु पक्षी भी उदास, स्त्रियां भी उदास, जाड़े गर्मे ऋतुआ ये सब उलट पुलट हो जाती हैं। किसी का जन्म या मरण नहीं होता, बालक बोलना आरंभ नहीं करता, मनुष्य पर यौवन आता ही नहीं है, बोया हुआ बीज अंकुरित होता ही नहीं है। इसी प्रकार सूर्य के उदय और अस्त, चंद्रमा की वृद्धि और ह्रास तथा समुद्र के उतार चढ़ाव भी बिना अनुकूल समय आते नहीं होता है। मैं तुम्हें सेनजीत का इतिहास सुनाता हूं, जो प्राचीन समय में एक विलक्षण राजा हुआ था। उसने एक बार अपने प्रजाजनों से कहा कि हे प्रजाओं, ये कालचक्र सभी मनुष्यों पर अपना प्रभाव डालता है। मनुष्य पृथ्वी के सभी पदार्थ समय आने पर नष्ट हो जाते हैं, धन हो स्त्री हो पुत्र हो पिता हो, इनके नष्ट हो जाने पर पुरुष हाय कैसा दुख आ गया, अब क्या करें कैसे जिएंगे, ऐसा सोचकर फिर वह उस दुख निवृत्ति का उपाय करता है। किंतु तुम मूर्ख बनकर शोक करते हो, जो शोक रूप ही थे उनके लिए शोक क्या करना, तुम्हारे दुख मानने से तो दुखों की और भय को मानने से भयों की वृद्धि होगी। न तो ये शरीर मेरा है न सारी पृथ्वी मेरी है, यह जैसी मेरी है वैसी सबकी है, और जैसे सबकी नहीं है वैसे मेरी भी नहीं है। ऐसा भाव रखने वाला कभी मोह में नहीं पड़ता। शोक के हजारों स्थान हैं, हर्ष के सैकड़ों अवसर हैं, किंतु उनका प्रभाव रोज रोज मूर्खों पर ही पड़ता है, विद्वानों पर नहीं पड़ता। एक दिन में मनुष्य के सामने कभी हर्ष की परिस्थिति आती है और कभी शोक की परिस्थिति आती है। इसलिए जिसे नित्य सुख की इच्छा हो वो सुख और दुख दोनों को त्याग दो। सुख या दुख, प्रिय या अप्रिय, जो कुछ प्राप्त हो उसे हृदय में अवसाद मत लाओ, प्रसन्नता से सहो। अपने स्त्री और पुत्रों के प्रति अनुकूल आचरण में थोड़ी सी भी कमी कर दो, फिर तुम्हें मालूम हो जाएगा कि कौन किस हेतु से किसका किस प्रकार संबंधी है। जब तक तुम परिवार के अनुकूल चलते हो तब तक तुम्हारे वो और वो तुम्हारे हैं, लेकिन जब थोड़ा सा तुम्हारे आचरण में भेद लाओ फिर देखो इनका कैसा व्यवहार होता है। इसलिए युधिष्ठिर, सेनजीत का कथन कितना सत्य है। जिस पुरुष को जो दुख सताता है उसको कभी शांति मिलने वाली नहीं, क्योंकि संसार में दुख का अंत नहीं। दूसरी बात है, दुख कोई प्राकृत पदार्थ नहीं है, ये हम खुद पैदा करते हैं। हमारी कल्पनाएं ऐसी होती हैं जिससे हम दुख को रस लेते हैं, और एक के पीछे दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा दुख होता ही रहता है। सुख दुख उत्पत्ति नाश हानि लाभ जीवन मरण ये आते ही रहते हैं। अतः धीर पुरुष को इनके कारण हर्ष या शोक नहीं करना चाहिए। राजाओं का योग तो बुद्धि की दीक्षा लेना, युद्ध की दीक्षा लेना, युद्ध करना, दंड नीति का ठीक ठीक व्यवहार करना, यज्ञ में दक्षिणा और धनदान देना ही है ही। इन्हीं से उनकी बुद्धि शुद्ध होती है। जो राजा बुद्धिमानी से न्यायपूर्वक राज्य का शासन करता है, अहंकार का त्याग करता है, सब प्रजा धर्म के अनुसार चलती है, उस राजा का संसार में बड़ा यश रहता है। चोर उससे सदा ही भयभीत रहते हैं, और प्रजा की सुख शांति से राजा का कल्याण होता है। व्यास जी के कहने पर राजा युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम जो समझते हो कि धन से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है, तथा निर्धन को स्वर्ग सुख और अर्थ की प्राप्ति नहीं हो सकती, तुम्हारी बात मुझे नहीं जचती। अनेकों मुनियों ने तपस्या में लगकर क्या सनातन लोगों को प्राप्त नहीं किया है? जो धर्म प्राण पुरुष ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर वेदाध्ययन द्वारा ऋषियों की संप्रदाय परंपरा की रक्षा करते हैं, क्या देवगण उनको ब्राह्मण नहीं कहते? जो लोग स्वाध्याय निष्ठ हैं, ज्ञान निष्ठ हैं, धर्म निष्ठ हैं, उनको तुम क्या समझते हो? उनके पास कौन सा धन है? वानप्रस्थों के कहने से हमें ये बात मालूम ही है कि राज्य के सब काम भी ज्ञान निष्ठों के ही हाथ में रखना चाहिए। बड़े बड़े महाराज अज है, प्रश्नी है, सिकत है, अरुण है, केतु है, इन्होंने स्वाध्याय के द्वारा स्वर्ग को प्राप्त किया। वेदोक्त कर्मों का आश्रय लेकर लोग दक्षिणायन मार्ग से स्वर्ग को जाते हैं, किंतु जो नियम के अनुसार चलते हैं वे उत्तर मार्ग पर दृष्टि रखते हैं, वे मोक्ष को प्राप्त होते हैं। राजा ययाति ने कहा था कि जब यह पुरुष किसी से नहीं डरता और वह किसी को भी भयभीत नहीं करता, किसी वस्तु की इच्छा भी नहीं करता, किसी व्यक्ति से द्वेष भी नहीं करता, उस व्यक्ति को ब्रह्म की प्राप्ति होती है। जब वह कर्म, मन और वाणी से सभी जीवों के प्रति दुर्भावना का त्याग कर देता है तो उसे ब्रह्म की प्राप्ति होती है। देखो महाराज जी ने कहा ना, किसी को बुरा मत समझो और किसी का बुरा मत करो और किसी का बुरा मत चाहो, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। वही बात है, जब मनुष्य कर्म, मन और वाणी से सभी जीवों के प्रति दुर्भावना का त्याग कर देता है उसे ब्रह्म की प्राप्ति होती है। जिसके मान और मोह दब गए हैं और जिसने बहुत पुरुषों का संग करना छोड़ दिया है, उस आत्मज महात्मा के लिए मोक्ष बड़ा सुलभ है। अर्जुन, मैं तो साफ साफ देखता हूं कि जो मनुष्य धन के पीछे पड़ा है उसके द्वारा त्याज्य कर्मों का छूटना बड़ा कठिन है। साधुता भी उसके लिए दुर्लभ है। शोक और भय से रहित होने पर भी जो पुरुष सदाचार से डिगा हुआ है, उसे धन की थोड़ी सी भी तृष्णा हो तो वह दूसरों से ऐसा वैर ठान लेता है कि उसे पाप की भी कोई परवाह नहीं रहती। ब्रह्मा ने तो यज्ञ के लिए धन उत्पन्न किया और यज्ञ की रक्षा के लिए मनुष्य की रचना की, इसलिए धन का उपयोग यज्ञ के लिए करना चाहिए। उसे आज भोगों में लगाना चाहते हैं, अच्छा नहीं है। इसी से लोगों के विचार खराब होते हैं। धन कभी किसी एक का नहीं होता है, अतः श्रद्धावान पुरुष को दान में, यज्ञ में धन का सदुपयोग करना चाहिए। जो धन मिले उसे दान में लगा दे, भोगों की तरफ न लगाए। दान देने में दो भूल होती है, ध्यान रखना चाहिए। एक तो कुपात्र के पास धन पहुंच जाता है या दूसरे सुपात्र को मिलता नहीं है, दोनों में दोष लगता है, दाता को दोष लगता है। अर्जुन, इस युद्ध में बालक अभिमन्यु, द्रौपदी के पुत्र धृष्टद्युम्न, राजा विराट, द्रुपद, वृषसेन, धृष्टकेतु तथा भिन्न भिन्न देशों के अनेकों राजा लोग काम में आ गए। इस सारे बंधुओं का बद जो हुआ है उसकी जड़ मैं ही हूं। हाय, मैं बड़ा राज्य लोलुप निकला, मैंने अपने कुटुंब का मूलोच्छेदन कर दिया, इसी से मेरा शोक जरा भी दूर नहीं हुआ। मैं अत्यंत आतुर हो रहा हूं, कैसा मूर्ख हूं, गुरुद्रोही हूं। यह राज्य कितने दिन टिकने वाला है और इन कर्मों का फल मैं कितने जन्मों तक भोगूंगा? थोड़ा विस्तार से देखो अर्जुन, इसी के लोभ में पड़कर मैंने दादा भीष्म को मरवा डाला। उन्होंने तो हमें पाल पोस कर बच्चे से बड़ा किया। गुरुवर द्रोणाचार्य को मेरी सत्यवादिता में कितना विश्वास था, 18 अक्षौणी सेना के बीच में उन्होंने केवल मेरे पर विश्वास किया और उन्होंने मुझसे अपने पुत्र के वध के विषय में पूछा था, किंतु मैंने हाथी की आड़ लेकर झूठ बोल दिया। ऐसा भारी पाप करके भला मैं किस लोक में जाऊंगा? हाय, मुझसे बड़ा और कौन पापी होगा? मैंने तो अपने बड़े भाई कर्ण को मरवा डाला और मरा तो मैं बड़ा खुश हुआ। अब पता चलता है मैंने कितना बड़ा अपराध किया है। केवल राज्य के लोभ से ना अर्जुन, मैंने बालक अभिमन्यु को कौरवों की सेना में झोंक दिया, तब से तो तुम्हारी और मेरी आंखें भी नहीं उठती हैं। बेचारी दुखिनी द्रौपदी के पांचों पुत्र मारे गए। द्रौपदी ने कितने कितने कष्ट हमारे साथ मिलकर सहे हैं और पांच पुत्रों के मर जाने के बाद भी द्रौपदी हमारे हर दुख में दुखी, सुख में सुखी रही। उनका शोक मुझे बराबर सालता रहता है। अर्जुन, मैं सत्य बोलता हूं, मुझे प्रायोपवेश के लिए आज्ञा दो। यहां बैठे हुए जितने ऋषि मुनि हैं सबको मैं प्रणाम करता हूं और सबके सामने निवेदन करता हूं, मैं यहां गंगा के तट पर बैठा बैठा शरीर को सुखा डालूंगा, अपने प्राणों को यही नष्ट करूंगा। आप लोग मुझे प्रायश्चित के लिए आज्ञा दीजिए। और भीम, अर्जुन, प्रिय नकुल और सहदेव और दुखिनी द्रौपदी, आप सब लोग हस्तिनापुर बड़े प्रेम से जाइए, आप में से योग्य को राजा बना दीजिए ताकि प्रजा का काम भी हो जाए और मैं यहां प्रायश्चित करके अपना काम पूरा कर लूं। वैशंपायन जी कहते हैं कि हे जन्मेजय, पांडु के ज्येष्ठ पुत्र राजा युधिष्ठिर को अपने संबंधियों के शोक से संतप्त होकर प्राण त्यागने के लिए तैयार देखकर व्यास जी उनका शोक दूर करने के लिए आगे आए और बोले, युधिष्ठिर क्या करते हो? हम लोग जो आपको इतनी बातें बोलते हैं, क्या बिना सोचे समझे बोलते हैं? एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूं, जरा ध्यान दो। एक बार विदेहराज जनक ने दुख और शोक से वशीभूत होकर अपना एक महामती ब्राह्मण अश्मा उससे पूछा, अश्मा नाम का ब्राह्मण उससे पूछा कि हे विप्रवर, अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को कैसा बर्ताव करना चाहिए? इस पर अश्मा ने कहा कि हे जनक महाराज, आप सब कुछ जानते हैं, कोई शास्त्र आपसे छिपा नहीं है, सब जानते हैं, फिर भी आप पूछते हैं, तो मैं निवेदन करता हूं, यह पुरुष जैसे जन्म लेता है उसके साथ ही सुख और दुख इसके पीछे लगे रहते हैं, वे इसके ज्ञान को उसी प्रकार नष्ट कर देते हैं जैसे तेज हवा चलने वाली वायु बदलों को छिन्न भिन्न कर देती है, सामने ही है। इसी से मनुष्य के हृदय में मैं कुलीन हूं, मैं सिद्ध हूं, मैं कोई मामूली आदमी थोड़ा ही हूं, मैं बहुत ये हूं, ऐसे ऐसे बातें उसके अंदर घुस जाती हैं। इनके नशे में भरकर वह अपने बाप दादों से प्राप्त हुई पूंजी को लुटाकर कंगाल हो जाता है और फिर दूसरों के धन पर मन ले जाता है। उसे मर्यादा का कोई ख्याल नहीं रहता है। वह अनुचित उपायों से धन जुटाने लगता है। यह देखकर राजा लोग उसे दंड देते हैं। इसलिए मनुष्य के ऊपर सुख या दुख जो कुछ आ पड़े उसे सहन करना चाहिए, क्योंकि उसे दूर करने का कोई उपाय नहीं है। अप्रिय का संयोग और प्रिय का वियोग, इष्ट अनिष्ट, सुख और दुख, ये सब प्रारब्ध के अनुसार होते हैं। जन्म मरण हानि लाभ ये भाग्य के अधीन है। वैद्यों को भी रोगी होते देखा जाता है, बलवान भी निर्बल हो जाते हैं, बड़े बड़े धनपति कंगाल होते देखे गए हैं। ये काल का उल्टा फेर बड़ा ही अद्भुत है। अच्छे कुल में जन्म, पुरुषार्थ, आरोग्यता, रूप, सौभाग्य, ऐश्वर्य, ये सब प्रारब्ध से मिलते हैं। जो कंगाल हैं, जो चाहते नहीं कि हमारे पास बहुत बड़ा धन हो, पर देखा गया अकस्मात बड़े धनपति हो जाते हैं। और जो संपन्न है वे अकस्मात दरिद्री बन जाते हैं। रोग, अग्नि, जल, शस्त्र, भूख, प्यास, आपत्ति, जहर, ज्वर, मृत्यु, ऊंची स्थिति से गिरना, ये सब पहले से निश्चित है। उसी नियम के अनुसार इन स्थितियों में इसको जाना पड़ता है। आज तक कोई इस प्रारब्ध से छूट नहीं सका है, अब कैसे छूटेगा? इस प्रकार काल के प्रभाव से जीव का इष्ट और अनिष्ट पदार्थों के साथ संबंध होता है। तुम क्या बात करते हो जनक? वायु, आकाश, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, दिन, रात, नक्षत्र, नदी, पर्वत, ये भी तो काल के ग्रास हैं। सर्दी, गर्मी, वर्षा का चक्र भी काल के योग से बनता है। यही बात मनुष्य के सुख दुख के विषय में, जब मनुष्य पर मृत्यु या वृद्धावस्था की चढ़ाई होती है तो औषधि, मंत्र, होम, जप वगैरह कोई बचा नहीं सकते। जिस प्रकार समुद्र में दो लक्कड़ कभी मिलते और कभी बिछुड़ते हैं, टक्कर खाते हैं, बिछुड़ जाते हैं, फिर टक्कर खाते हैं, बिछुड़ जाते हैं, ऐसे ही संसार सागर में जीवों का मिलना बिछुड़ना, मिलना बिछुड़ना होता है। कोई मां बनता है, कोई बाप बनता है, कोई स्त्री बनता है, कोई पुत्र बनता है। एक एक जीव न जाने कितनी कितनी बार बाप बना है, कितनी बार मां बना है, कितनी बार स्त्री बना है, कितनी बार पुत्र बना है। एक जीवन के साथ क्यों सोचते हो? यदि हम अनादि सृष्टि के ऊपर विचार करें तो प्रत्येक जीव की जाने कितनी कितनी देहों में अहम भाव बना है। रास्ते में चलते हुए बटोइयों के समान हमारा स्त्री, पुत्र और मित्रों से मिलना बिछुड़ना होता है। विवेकी पुरुष को अपने मन पर इसी बात पर विचार करना चाहिए, मैं कौन हूं, मैं कहां का हूं, मैं कहां जाऊंगा, किसकी क्या, यहां किस कारण से आया हूं, यहां कौन मेरा है, किसके लिए किसका शोक करूं। संसार तो अनित्य है, चक्र के समान घूमता रहता है। चक्की में जैसे बाजरी के दाने पिसते रहते हैं, अब कौन दाना कब पिसे इसका कोई पता नहीं है। इसी प्रकार माता पिता, भाई बंधु, मित्र, तुम हम सब कब कहां इस काल चक्की में पिस जाए कुछ पता नहीं है। इसलिए कल्याणकामी पुरुष को चाहिए कि शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन न करे। तीन बातों पर ध्यान रखे, पितरों का श्राद्ध करना, देवताओं का पूजन करना, यज्ञों का अनुष्ठान करना। ये संसार अगाध काल समुद्र में डूबा हुआ है, इसमें जरा मृत्यु जैसे विशाल ग्राह हैं, किंतु इसे कुछ होश ही नहीं है। वैद्य लोग भी बड़े कड़वे कड़वे काढ़े और तरह तरह के घी पीते रहते हैं तो भी समुद्र जैसे अपने तट का उल्लंघन नहीं करता, उसी प्रकार मृत्यु को वे भी पार नहीं पा सकते। जो रसायनों के जानने वाले वैद्य तरह तरह के रासायनिक द्रव्यों का सेवन करते हैं, किंतु उन्हें भी तो बुढ़ापा आता है और वे भी तो काल के ग्रास बनते हैं। बड़े बड़े तपस्वी, स्वाध्यायशील दानी, बड़े बड़े यज्ञ करने वाले भी बूढ़े होते हैं, मरते हैं। जन्म लेने वाले सभी जीवों के दिन, रात, मास, वर्ष, पक्ष एक बार बीतकर फिर कभी नहीं लौटता। मृत्यु का ये लंबा रास्ता सभी जीवों को तय करना पड़ता है। अतः ऐसा कोई मरण धर्मा मनुष्य नहीं है जिसे काल के वशीभूत होकर इसमें से निकलना न पड़े। इस मार्ग में स्त्री आदि के साथ जो समागम होता है वह राहगीरों के समान और थोड़े क्षणों का होता है। इनमें से किसी के साथ मनुष्य का नित्य निवास होता है, लंबा निवास होता है, किन्हीं के साथ संक्षिप्त निवास होता है, पर नित्य निवास नहीं हो सकता। जब अपने शरीर के साथ ही हम बहुत दिनों तक नहीं रह सकते तो जनक, दूसरे संबंधियों के साथ हम कहां तक रहेंगे? आज तुम्हारे बाप दादा हैं, कहां गए? अब न तो तुम उन्हें देख सकते, न वे तुम्हें देख सकते। स्वर्ग और नरक को तो मनुष्य नेत्रों से कभी देख नहीं सकता, उन्हें देखने लिए एक तो सत्पुरुष के शास्त्र रूपी नेत्रों से काम लेना पड़ेगा। मनुष्य को पहले ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, उसके बाद गृहस्थाश्रम स्वीकार करके पितर और देवताओं के ऋण से मुक्त होना चाहिए। ऐसे सूक्ष्मदर्शी गृहस्थ को अपने हृदय का शोक त्याग कर इस लोक स्वर्गलोक अथवा परमात्मा की आराधना करनी चाहिए। जो राजा शास्त्रानुसार धर्म का आचरण और द्रव्य संग्रह करता है उसका संपूर्ण चराचर लोक में सुयश फैलता है। व्यास जी कहते हैं, युधिष्ठिर अश्वा मुनि से इस प्रकार धर्म का रहस्य जानकर राजा जनक की बुद्धि शुद्ध हो गई, मनोरथ पूरा हो गया और वे शोकहीन होकर वे अपने महल में आ गए। इसी प्रकार तुम भी अपना शोक छोड़ो, मन को प्रसन्न करो, शास्त्र के अनुसार जीते हुए इस पृथ्वी के राज्य को भोगो। वैशंपायन जी कहते हैं कि राजन, व्यास जी का यह उपदेश सुनकर राजा युधिष्ठिर ने कुछ नहीं कहा। जब राजा युधिष्ठिर चुप हो गए तब अर्जुन ने धीरे से कृष्ण से कहा, हे माधव, धर्मराज युधिष्ठिर बंधुओं के शोक से अत्यंत पीड़ित हो रहे हैं। भगवान ने कहा, हो रहे हैं, ये शोक सागर में डूबे जा रहे हैं, डूबे जा रहे हैं, आप इन्हें ढांढस बधाइए। कृष्ण भगवान ने कहा, अर्जुन, अभी तक मुझे युधिष्ठिर ने कुछ पूछा नहीं है। जब युधिष्ठिर मुझसे पूछे तब मैं उसे कहूं, वो कही हुई बात असर करेगी। बिना पूछे बिना जिज्ञासा के किसी प्रकार से बात कहने पर उस बात का प्रभाव नहीं पड़ता। सुनो अर्जुन, तुमने कितनी जिज्ञासा व्यक्त करके कल्याण की बात पूछी थी तो मैंने तुम्हें भरे युद्ध में सुना दिया। ऐसी लालसा यदि युधिष्ठिर महाराज की अभी मेरे साथ हो तो मैं उनको कह सकता हूं। इतना जरूर है, धर्मराज युधिष्ठिर मेरी बात टालते नहीं है, इसलिए पूछे तो कहें। भगवान कृष्ण की और अर्जुन की ऐसी गुप्त और सूक्ष्म स्वर से बात हो रही थी, इतने में ही महाराज युधिष्ठिर ने कृष्ण की ओर देखा और कहा, हे कृष्ण, ऋषि मुनि भाई लोग सब मुझे राज्य करने के लिए कहते हैं, मेरा विचार प्रायश्चित पूर्वक शरीर को छोड़ने का है, आपकी इस विषय में क्या सम्मति है? युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम के साथ अपने स्थान से उठकर युधिष्ठिर के पास आकर उसका हाथ पकड़ते हुए कहा और बड़े प्रसन्न शब्दों में कहा, राजन, आप शोक न करें, यह आपके शरीर को सुखाए दे रहा है। जो लोग इस रणांगण में मारे गए उनका मिलना असंभव है। जिस प्रकार जगने पर स्वप्न में प्राप्त होने वाली सभी वस्तुएं असंभव हैं कि मिल जाए, उसी प्रकार इस महायुद्ध में क्षत्रिय मारे गए तो वे तो गए सो गए, वो तो एक स्वप्न था। उस स्वप्न के समान उसको छोड़ दो, आगे का रास्ता लो। शस्त्रों से मारे जाने के कारण वे सब दिव्य लोक में पहुंच गए, आप इनके लिए शोक करते हैं, बड़ा आश्चर्य है। आप उनके लिए कोई शोक न करें। यदि वे दुर्गति में पड़े होते, यदि वे किसी पाप योनि में गए होते तब आप उनके लिए शोक करते? वो तो खूब आनंद से स्वर्ग का सुख भोग रहे हैं, आप व्यर्थ में यहां रो रहे हैं। वे सभी बड़े शूरवीर थे, क्षात्र धर्म में प्रवृत्त थे, वेद वेदांग के पारदर्शी थे। उन्होंने वीरों के योग्य उत्तम गति प्राप्त की है। इसलिए महाराज युधिष्ठिर, मैं आपको एक प्राचीन प्रसंग सुनाता हूं, गहरा विचार कीजिए। एक बार राजा श्रींजय पुत्र शोक में डूबे हुए थे, धरती पर पछाड़ खा रहे थे, तो वहां नारद जी आए। नारद जी ने कहा, संजय ये क्या हो रहा है? सुख दुख से तो मैं, तुम और सारी प्रजा से कोई भी छूटा हुआ नहीं है, इसलिए शोक क्यों करते हो? शांत रहो, मैं जो बात कहता हूं उस पर ध्यान दो। प्राचीन राजाओं का बड़ा मनोहर प्रसंग सुनाता हूं, उसके ऊपर तुम ध्यान दो। इन बातों को सुनने से मनुष्य को बड़ी शांति मिलती है। संजय, तुमने राजा सुहोत्र को देखा, सुना? क्या सुना? कितना बड़ा अतिथि सेवी। इंद्र ने एक साल तक उसके राज्य में सोने की वर्षा की। उसके राज्य काल में पृथ्वी का वसुमती नाम चरितार्थ हुआ। वसु बोलते हैं धन को। नदियों में पानी की जगह सोना बहता था। उन नदियों के अंदर कछुए, केंकड़े, नाके, मगरमच्छ, मछलियां, ये सब सोने की थीं। राजा सुहोत्र ने उस सारे सोने को कुरु जंगल देश में इकट्ठा कराया, बड़ा भारी यज्ञ करवाया और सब दान में दे दिया। क्या वो आज सुहोत्र आज जीवित है? नहीं है। अंत में तो मरा ना, इसलिए तुमको भी पुत्र शोक नहीं करना चाहिए। और सुनो, देखो भगवान कृष्ण कहां कहां की बातें लाकर बता रहे हैं। नारद जी ने कहा, संजय उसी नर के पुत्र शिवी के मरने की बात भी हमने सुनी है। प्रजापति ब्रह्मा जी भी अपने राज्य का भार यदि संभालने का विचार करते थे तो एक राजा शिवी पर करते थे। इतना विलक्षण राजा, पर वो भी तो मर गया, आज कहां है? इसलिए पुत्र शोक मत करो। और दुष्यंत का पुत्र भरत, जिसने हजार अश्वमेध किए, 100 राजसूय यज्ञ किए, वह तुमसे भी बढ़कर था, किंतु वो भी काल के गाल में चला गया। तुम अपने पुत्र के लिए क्यों शोक करते हो? हे संजय, सुना जाता है अयोध्या नगरी में दशरथ नंदन राम हुए। प्रजा को अपनी संतान के समान पालते थे। राम के राज्य में कोई स्त्री विधवा या अनाथा नहीं थी। मेघ समय पर बरसते थे, समय पर अन्न पकता था, सर्वदा अनुकूलता थी, सुकाल था, कोई जीव पानी में डूबकर नहीं मरता, आग से जलकर नहीं मरता, रोग से पीड़ित होकर नहीं मरता। स्त्री और पुरुषों की हजारों वर्ष की आयु होती थी। विवाद तो स्त्रियों में कभी होता ही नहीं था, पुरुषों की तो बात ही क्या है, क्योंकि ज्यादा विवाद स्त्रियों से चालू होता है। इसलिए उनके जमाने की स्त्रियां बड़ी सुशील होती थीं। प्रजा सर्वदा धर्म में लगी रहती थी। सब लोग संतुष्ट, पूर्ण काम, निर्भय, स्वेच्छानुसार आचरण करने वाले सत्यवादी थे। जब तक उन्होंने राज्य किया, वृक्ष सर्वदा फल फूलों से लदे रहे। गौएं दोहिनी भरकर दूध देती रही। उन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले 10 अश्वमेध यज्ञ किए, जिनमें आने जाने के लिए किसी को भी रोका टोका नहीं गया। महाबाहु राम नित्य नव यौवनशाली, श्यामवर्ण, अरुण नयन, आजान बाहु, सुंदर मुख वाले, सिंह के समान स्कंद वाले, 11,000 वर्ष तक अयोध्या का राज्य किया, किंतु वे भी आज नहीं है। इसलिए पुत्र का शोक क्यों करते हो संजय? और सुनो, महाराज भगीरथ, कौन उनका नाम नहीं जानता, उन्होंने यज्ञानुष्ठान करते समय सोने के आभूषणों से लदी हुई 10,00,000 कन्याएं दक्षिणा में दान दी थी। उनमें से प्रत्येक कन्या रथ में बैठी थी, प्रत्येक रथ में 4-4 घोड़े और उसके पीछे सोने और कमल की मालाओं से सुशोभित 100-100 हाथी और एक एक हाथी के पीछे 1,000,000 घोड़े तथा एक एक घोड़े के पीछे 1,000,000 गऊ और प्रत्येक गऊ के साथ 1,000 भेड़ बकरियां। इतना सारा सामान दिया उन्होंने कन्याओं को। तीनों लोकों में प्रवाहित होने वाली गंगा जी उनकी पुत्री होकर प्रकट हुई थी, इसलिए आज गंगा को भागीरथी कहते हैं। किंतु वे भागीरथ जी भी आज नहीं रहे, इसलिए तुम अपने पुत्र के लिए क्यों शोक करते हो? श्रृंजय, राजा दिलीप कितने महान कार्य करने वाले थे, आज तक ब्राह्मण लोग उनका बखान करते हैं। उन्होंने जब यज्ञानुष्ठान किया, देवता प्रत्यक्ष आकर अपना भाग लेके गए थे। उनके यज्ञ पात्र यूप सोने के थे। उनके यज्ञोत्सव में 6000 देवता और गंधर्वों ने 7 स्वरों के अनुसार नृत्य किया था। जिन लोगों ने उन सत्यवादी महात्मा दिलीप का दर्शन किया, वे भी स्वर्ग के अधिकारी हो गए। दर्शन करने मात्र से उनके राजमहल में हरदम वेद ध्वनि होती रहती थी, और उसी राजमहल में धनुष की प्रत्यंचाओं की टंकार भी चलती रहती थी, और मांगने वालों का कोलाहल भी होता रहता। 3 शब्द कभी बंद नहीं होते थे, किंतु वे राजा दिलीप भी मृत्यु के ग्रास बन गए। तुम क्यों शोक करते हो? अरे युवनाश का पुत्र मानधाता, उनके पिता ने भूल से यज्ञ का जल पी लिया तो वो अपने बाप के पेट से पैदा हुए। सुना कभी ऐसा राजा मानधाता हुआ? वो यज्ञ इंद्र का था। इंद्र ने अपने हाथ की अंगुली उसके मुंह में दी, उसके पीने मात्र से एक ही दिन में 100 पल बढ़ गया। 12 दिन में वो मानधाता 12 बरस का हो गया। वह बालक बड़ा धर्मात्मा, शूरवीर, युद्ध में इंद्र के समान पराक्रमी। इसने राजा अंगार, मरुत, गय, अंग और बृहद्रथ को परास्त किया। सूर्य के उदय स्थान से लेकर अस्ताचल तक उसका सारा देश था मानधाता का। 100 अश्वमेध, 100 राजसू यज्ञ और 10 योजन लंबे और 1 योजन ऊंचे सोने के मत्स्य बनवाकर ब्राह्मणों को दान दिए। 10 योजन, योजन बोलते हैं 4 कोस को, 10 × 40 कोस लंबे, और 1 योजन माने 4 कोस चौड़े और 1 योजन ऊंचे माने 4 कोस ऊंचा। ऐसे सोने के मत्स्य माने मछलियां बना बनाकर ब्राह्मणों को दान में दी। पर मानधाता का आज कोई नाम निशान नहीं। नाभाग के पुत्र अम्बरीश बड़ा भारी यज्ञ करके ब्राह्मणों का सत्कार किया। उनकी सराहना होती थी कि ऐसा यज्ञ न तो पहले कभी हुआ न भविष्य में होगा। उस यज्ञ के अंदर लाखों राजाओं ने सेवा का काम किया। वे सभी अश्वमेध यज्ञ का फल भोगने के लिए उत्तरायण मार्ग से हिरण्यगर्भ लोक में गए, किंतु कराल काल ने उन अम्बरीश को भी नहीं छोड़ा। तुम्हारा पुत्र कौन गिनती में था श्रृंजय? हम सुनते हैं चित्ररथ का पुत्र शशबिंदु, 1,00,000 रानियां थी, उनसे उसके 10,00,000 पुत्र उत्पन्न हुए, और प्रत्येक राजकुमार को 100-100 कन्याएं विवाही गईं। प्रत्येक कन्या के पीछे 100-100 हाथी और 1-1 हाथी के साथ 100-100 रथ, और 1-1 रथ के पीछे 100-100 घोड़े और 1-1 घोड़े के पीछे 100-100 गौवे थीं। इस क्रम से 1 गौवे के पीछे 100-100 भेड़े भी दहेज में दी मिली थी। किंतु महाराज शशबिंदु ने 1 अश्वमेध यज्ञ में सारा धन ब्राह्मणों को दे दिया। तुमसे तो वह राजा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों बातों में बढ़ा चढ़ा था, पर वह भी मृत्यु के मुख में चला ही गया ना। फिर पुत्र के लिए क्या शोक करते हो? हे श्रृंजय, अमूर्तराया के पुत्र गाय की मृत्यु के विषय में भी हम सुनते हैं, वो भी मर गया। इक्ष्वाकु के वंश में राजा सागर हुए, जिनके नाम से आज ये सागर प्रसिद्ध है। 60,000 बेटा उनके पीछे पीछे चलते थे। 1 छत्र पृथ्वी पर उसका शासन था। 1,000 अश्वमेध यज्ञ किए, देवताओं को तृप्त किया, ब्राह्मणों को सोने के महल बना बना करके दान में दिए। समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी खुदवा डाली, तभी तो समुद्र का नाम सागर हुआ। परंतु आज सागर के दर्शन नहीं होते, क्योंकि वे मर गए। अब तुम पुत्र का क्या शोक करते हो? वेन का पुत्र राजा पृथु हुआ। महर्षियों ने महान वन के बीच में उनका राज्याभिषेक किया। उनका नाम पृथु हुआ कि उन्होंने धर्म को प्रथित माने विस्तृत किया, इसलिए उनका नाम पृथु हुआ। प्रजा का रंजन करने के कारण से वे राजा कहलाए। वे राज्य करते थे, पृथ्वी बिना जोते ही धनधान्य उत्पन्न करती थी। औषधियां पुट में रस था, सभी गौवे दोहिनी भरकर दूध देती, माने जो जितना पात्र ले उस पात्र को भर दे गौवे। मनुष्य निरोग पूर्ण काम निर्भय इच्छा अनुसार खेत घर में खुले रहो, किसी प्रकार से कोई वहां डर और भय नहीं था। उन्होंने ब्राह्मणों को सोने के 21 पर्वत दान में दिए, किंतु अंत में राजा पृथु को भी मरना पड़ा था। श्रींजय ने कहा, हे नारद, इतना आपने उपदेश दिया, कितने कितने राजा महाराजा गए, उन सब की मृत्यु को सुनकर मेरा सारा शोक नष्ट हो गया। परंतु एक नई लालसा पैदा हो गई, मुझे आपके वचन इतने मीठे लग रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि हरदम सुनता ही रहूं। अभी मेरी सुनने की इच्छा पूरी नहीं हो रही है। क्या अमृत के समान ये गुटके मेरे अंदर जा रहे थे, मेरी उत्कंठा बढ़ गई। शोक तो नष्ट हो गया, पर ऐसे वचन सुनने की बड़ी उत्कंठा हो गई। क्या करूं, पुत्र का शोक तो समाप्त हो गया और सत्संग की बातों में रुचि हो गई। नारद जी बोले, अच्छा बताओ, एक तरफ हम तुमको पुत्र दें और एक तरफ हम तुमको एक ज्ञान की बात सुनाएं, दोनों में से कहे कि एक चीज ले हो, तो तुम कौन सी चीज लोगे? श्रींजय ने कहा, महाराज, पुत्र तो फिर मिलेगा तो मरेगा, या मैं मर जाऊंगा, हमारा तो वियोग होगा ही, मुझे तो आप सत्संग की बातें सुनाओ, मैं तो सत्संग सुनना चाहता हूं। पुत्र का क्या है? नारद जी ने कहा कि इतना तुम्हारा सत्संग में प्रेम है तो तुम पुत्र प्राप्ति के अधिकारी हो। नारद जी ने उसको पुत्र दिया और कहा कि पुत्र तुम्हारे सेवा करेगा, ये 1100 बरस तक पृथ्वी का राज्य करेगा। तुम्हारी सत्संग में जो प्रीति हुई, हम तो यही चाहते हैं, पुत्र पौत्र आदि हो तो भी उनसे संबंध मत रखो, नहीं हो तो संबंध करने का प्रश्न ही नहीं है, हमारे सत्संग का सार इतना ही है। भगवान कृष्ण ने कहा, पूछो युधिष्ठिर नारद से की बात है कि नहीं। नारद जी ने कहा, हे कृष्ण, आप सर्वज्ञ हैं, आपने जो कुछ कहा है उसका मैं समर्थन करता हूं। मैंने उसको जीवित किया था, उसके पुत्र को, और पुत्र को कहा मां बाप की सेवा करना, माता पिता को कह दिया किसी प्रकार मोह मत करना, और उसके बाद श्रींजय ने केवल आपकी भक्ति की और वो अपने स्थान पर चला गया, वो पुत्र से कोई मोह नहीं किया। इसलिए धर्मराज, अब आप अपने हृदय का संताप दूर करो। नारद जी बोलते हैं, कृष्ण और व्यास के अनुसार अपने पैतृक राज सिंहासन पर बैठकर शासन को संभालो, ये सब करते हुए यदि तुम बड़े यज्ञों का अनुष्ठान करोगे तो अपने अभीष्ट लोक की प्राप्ति करोगे। नारद जी को इस प्रकार कहते देखकर, कृष्ण भगवान से बातें सुनकर युधिष्ठिर जी ने सिर नीचा कर लिया, कुछ नहीं बोले। धर्म का रहस्य जानने वाले महर्षि व्यास ने कहा, युधिष्ठिर, कृष्ण से बढ़कर और क्या वचन की प्रामाणिकता तुम समझते हो? तुम अपना पैतृक राज सिंहासन स्वीकार करो। वेदों ने तप को तो ब्राह्मणों का नित्य धर्म बताया है, क्षत्रिय तो सब प्रकार के धर्म की रक्षा करने वाला है। जो मनुष्य विषयासक्त होकर धर्म विधि का उल्लंघन करता है वह लोक मर्यादा का विघातक है, क्षत्रिय को अपने बाहुबल से उसको दंड देना चाहिए। जो व्यक्ति मोहवश शास्त्र प्रमाण को न माने, वह अपना सेवक भी हो, पुत्र भी हो, तपस्वी हो या और कोई भी क्यों न हो, उस पापी को सब प्रकार से दंड देने का राजा को अधिकार है, उसको मारने तक का अधिकार है। और जो राजा इसके विपरीत आचरण करता है, दंड नहीं देता है, उसे पाप लगता है। युधिष्ठिर ने कहा, महाराज मेरी स्थिति आपको बताऊं। अभी भगवान कृष्ण ने संजय और नारद का संवाद सुनाया। सच पूछा जाए मेरे अंदर भी संजय जैसी सत्संग की बातें, ज्ञान की बातें सुनने की बड़ी इच्छा हो गई। मैं चाहे राज्य करूं, चाहे मैं प्रायोपवेश के लिए बैठूं, मुझे दोनों ही कुछ नहीं लगती। मुझे इन बातों में बड़ा रस का अनुभव होता है। जीवन तो आपके वचनों में है, इसमें संदेह नहीं है। बस थोड़ी सी एक सांस के साथ हर बात यही आती है कि जिनके चरणों में मुझे अपना सिर रखना चाहिए था, युद्ध में वे लोग मारे गए। दुर्योधन आदि का इतना शोक नहीं है, भीष्म का शोक, द्रोणाचार्य का शोक, कर्ण का शोक, वो शोक मुझे जला रहा है। ये शोक मेरा आपके उन वचनों से शांत होगा। और सुनाइए मुझे ऐसी बातें, और सुनाइए। व्यास जी बोले, उद्दंड पुरुषों को दंड देना राजा का कर्तव्य है। तुमने कौरवों को मारा है, क्यों मारा? केवल राज्य प्राप्ति के लिए? नहीं, केवल राज्य प्राप्ति के लिए नहीं मारा। तुमने उनको इसलिए मारा है कि तुम्हारे सामने सिवाय युद्ध के दूसरा कोई चारा नहीं था, क्योंकि उन्होंने पृथ्वी पर बड़ा अन्याय किया, पाप किया। तुम व्यर्थ ही मन को शोकग्रस्त करते हो, निर्दोष होने पर भी अपने में दोष देखकर शोक करते हो। ऐसी आत्मग्लानी आपके शोभा नहीं देती है। युधिष्ठिर ने कहा, महाराज मैंने राज्य के लोभ से ही तो सब युद्ध किया था, क्योंकि युद्ध का फल राज्य है। नहीं, युद्ध का फल राज्य नहीं था, युद्ध तुम्हारा कर्तव्य था। ये कर्तव्य बुद्धि से तुम्हारा युद्ध हुआ है। युधिष्ठिर ने कहा, महाराज कितने लोग मेरे पक्ष के मर गए, जातिवध मैंने करवाया, सैकड़ों शत्रु पक्ष के वीर मारे गए और करोड़ों लोग उनके पीछे रोते हैं। उनका नाश हम लोगों ने किया था ना, हे ब्राह्मणवर, उन स्त्रियों का अपने मृत संबंधियों के प्रति कैसा प्रेम था, अकस्मात वो युद्ध के अंदर मरने से प्रेम टूटा, उनके आघात लगा है, इस प्रकार स्त्री वध का ही पाप हुआ ना। अब हमें सिर नीचा किए नरक में ही तो जाना पड़ेगा। अब हम भीषण तपस्या करके अपने शरीर को त्यागे तो भी इसका प्रायश्चित होगा, ऐसा मन में आता है कि नहीं। व्यास जी कहते, नहीं, तुम क्षत्रियों में अग्रगण्य हो, धर्म के अनुसार तुम काम करने वाले हो। देखो, मरना और जीना तुम्हारे हाथ की बात नहीं, इनका संहार काल ने किया है। तुम्हारे हाथ की बात होती तो अभिमन्यु को बचा लेते, द्रौपदी के पांचों बेटों को बचा लेते। ये तो तुम्हारे पक्ष में थे, उनको क्यों मरने दिया? ये काल है, काल, ध्यान रखो, उसका न कोई मां है, न उसका कोई बाप है, न उसके लिए कोई दया है, न उसके लिए कभी क्रोध है। काल अपने चक्र से चलता है। तुम्हारा युद्ध तो उसके लिए केवल निमित्त मात्र था। ये संहार भगवत स्वरूप है, इसके सिवा तुम्हें कौरवों के विनाशकारी कर्मों पर भी ध्यान देना चाहिए। जिस प्रकार लोहार का बनाया हुआ यंत्र अपना काम करने में उसके अधीन रहता है, उसी प्रकार सारा जगत काल के अधीन है। पूर्व काल में राजलक्ष्मी के लिए देवता और असुरों में 12,000 वर्षों तक युद्ध हुआ था और उसमें देवताओं ने दैत्यों का संहार किया था। तुम्हारा तो 18 ही दिन युद्ध हुआ है। ये देवता और दैत्य भाई भाई तो थे, पिता एक माताएं अलग अलग थे, तो भाई ना। 12,000 वर्षों तक युद्ध किया देवताओं ने और 88,000 शालावृक नाम के दैत्यों को मारा। यदि एक पुरुष को मारकर कुटुंब के शेष व्यक्तियों को सुख मिले अथवा एक कुटुंब का सफाया करने से देश में शांति स्थापित हो तो उनके नष्ट करने में कोई दोष नहीं है। युधिष्ठिर, किसी समय अधर्म दिखाई देने वाला कर्म भी धर्म होता है और कभी धर्म दिखाई देने वाला काम भी अधर्म हो जाता है। उद्देश्य क्या है? तुमने शास्त्र श्रवण किया है, ऐसे पाप का न कोई प्रायश्चित है न कभी नाश होता है। जो पुरुष हृदय में पाप की भावना रख करके कुकर्म करता है उसका कोई प्रायश्चित नहीं होता। युधिष्ठिर ने कहा, महाराज अब बहुत रस का अनुभव हो रहा है, कर्तव्य अकर्तव्य का थोड़ा संक्षेप में वर्णन कीजिए, मुझे बड़ी शांति मिली है। व्यास जी ने कहा, जो मनुष्य शास्त्र विहित कर्मों का आचरण न करके निषिद्ध कर्म करता है उसे ऐसा विपरीत आचरण करने से प्रायश्चित का भागी बनना चाहिए। जैसे जो ब्रह्मचारी सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सोता रहे अथवा जिस पुरुष के नख या दांत काले हों उसे प्रायश्चित करना चाहिए। इसके सिवा बड़े भाई के अविवाहित रहते हुए छोटा भाई विवाह करवाता है उसको प्रायश्चित करना चाहिए। ब्राह्मण का वध करने वाला हो, निंदक हो, छोटी कन्या का विवाह हो जाने के बाद उसकी बड़ी बहन से विवाह करने वाला हो, बड़ी बहन के अविवाहित रहते हुए उसकी छोटी बहन से जो विवाह करने वाला हो वो पापी होता है, प्रायश्चित करना चाहिए। जिसका व्रत नष्ट हो गया हो वो ब्रह्मचारी, द्विज की हत्या करने वाला, अपात्र को दान देने वाला, सुपात्र को दान न देने वाला, सारे ग्राम को कष्ट देने वाला, मांस बेचने वाला, आग लगाने वाला, वेतन लेकर वेद पढ़ाने वाला, गुरु और स्त्री का वध करने वाला, दूसरों का घर जलाने वाला, झूठ बोलकर पेट पालने वाला, गुरु का अपमान और सदाचार की मर्यादा का उल्लंघन करने वाला, ये सभी पापी माने गए हैं, इन्हें प्रायश्चित करना चाहिए। इसके सिवा जो लोक और वेद से विरुद्ध दूसरे न कर्म करने योग्य कर्म है उन्हें बताता हूं, तुम एकाग्रचित से सुनो। अपने धर्म को त्यागना, दूसरे के धर्म का आचरण करना, यज्ञ करने के अनधिकारी से यज्ञ कराना, अभक्ष्य भक्षण करना, शरणागत को त्यागना, माता पिता का भरण पोषण न करना, दूध दही आदि रस पदार्थों को बेचना, पशु पक्षियों को मारना, शक्ति रहते हुए भी अग्न्याधान आदि कर्म न करना, गोग्रास आदि नित्य दानों को न करना, ब्राह्मणों को दक्षिणा न देना अथवा ब्राह्मणों का धन छीन लेना, धर्म तत्व के जानने वालों ने ये सभी कर्म पाप की श्रेणी में रखे हैं। जो पुरुष पिता के साथ झगड़ा करता है, जो मां बाप के साथ झगड़ा करता है, गुरु स्त्री के साथ समागम करता है, वह धर्म का त्याग करने वाला होता है। इस प्रकार संक्षेप और विस्तार से ऊपर जो कर्म कहे उनमें से किन्हीं को करने पर किन्हीं को न करने पर मनुष्य प्रायश्चित का भागी होता है। अब जिन जिन कारणों से इन कर्मों को करने पर भी मनुष्य को पाप नहीं लगता वो भी सुनो। दिखने में तो पाप होते हैं लेकिन पाप नहीं होता। यदि युद्ध स्थल में कोई वेद वेदांत का पारगामी ब्राह्मण भी हाथ में हथियार लेकर मारने के लिए आवे तो उसका वध करने से ब्रह्म हत्या का पाप नहीं लगता। इसका एक वेद मंत्र भी है, मैं तुमसे जो वही बात कहता हूं जो वेद के अंदर लिखा हुआ है। तुम बार बार गुरु द्रोणाचार्य भीष्म आदि का नाम लेते हो, ये सब मारने योग्य थे। यदि इतना होता तो श्री कृष्ण वही युद्ध से अर्जुन को लौटा ले जाते। जिस युद्ध में कृष्ण युद्ध का संचालन कर रहे हैं, एक योद्धा के रथ में बैठकर इशारा करते हैं, युधिष्ठिर तुम उनसे बढ़कर हो गए। यहां आकर युधिष्ठिर चुप हो गए। यदि कोई पुरुष अपने धर्म से डिगे हुए आत्ताई ब्राह्मण को मार डाले तो उसे ब्रह्म हत्या नहीं लगता। अनजान में अथवा प्राण संकट के समय भी यदि मदिरा पान कर ले तो बाद में धर्मात्माओं की आज्ञा के अनुसार उसे उसका पुनः संस्कार करा देना चाहिए। चोरी सर्वथा निषिद्ध है, किंतु कभी कभी चोरी का भी दोष नहीं लगता है। झूठ बोलना निषिद्ध है, परंतु किसी दूसरे प्राणी की रक्षा के लिए, गुरु की रक्षा के लिए अथवा विवाह के प्रसंग में झूठ झूठ नहीं होता है। अज्ञानवश किसी अपात्र ब्राह्मण को दान दे दिया और अज्ञानवश योग्य ब्राह्मण का सत्कार नहीं हो पाया, दोष नहीं लगता है। घर के अंदर व्यभिचारिणी स्त्री का यदि तिरस्कार होता है तो उसका दोष नहीं लगता, बल्कि ऐसा करने से उसकी शुद्धि होती है। जो सेवक कामकाज करने में असमर्थ है उसे त्यागने में दोष नहीं है, तथा गऊ के लिए वन में आग लगा लेने में तथा गऊ के लिए वन में आग लगाने में भी दोष नहीं माना जाता। कोई वाक्य छूटा हुआ है। ये सब मैंने जो बात बताई है इनमें कोई दोष नहीं होता। अनेक प्रकार के कृच्छ चांद्रायण आदि व्रत भी हैं। जो पुरुष जलती हुई लोहे की शिला पर पड़ जाए या अपने शरीर को त्याग दे वो पाप से छूट सकता है, कोई ऐसी बात है। कई प्रकार के मनु जी ने भी इसी प्रकार के पापों के प्रायश्चित बताए हैं। बिना दी हुई वस्तु को कभी नहीं लेना, दान देने में तत्पर रहना, अध्ययन और तपस्या में तत्पर रहना, अहिंसा सत्य अक्रोध और यज्ञ ये सब धर्म के लक्षण हैं। एक ही क्रिया देश और काल के भेद से अधर्म और अधर्म हो जाते हैं। चोरी करना, झूठ बोलना, हिंसा करना आदि अधर्म भी कई अवस्था विशेष में धर्म हो जाता है। विवेकी लोग जानते हैं कि धर्म और धर्म ये दोनों देश काल के विचार से अधर्म और धर्म दोनों हो सकते हैं। पिता भयंकर क्रोध में है और वो अपने हाथ से तलवार लेकर किसी को मारना चाहता है, लेकिन पुत्र उनकी रखी हुई तलवार को चुपचाप वहां से उठाकर फेंक देता है। ये एक तरह से चोरी होते हुए भी चोरी नहीं है। ऐसी ऐसी कई बातें बताई। अन्न के विषय में विचार करो। प्रेत के निमित्त बनाया हुआ अन्न, सूतिका का अन्न 10 दिन से पहले नहीं खाना चाहिए। इसी प्रकार ब्याई हुई गऊ का दूध भी कम से कम 10 दिन तक नहीं पीना चाहिए। राजा का अन्न तेज को नष्ट करता है, शूद्र का अन्न ब्रह्म तेज नाशक है, तथा कोई लिखा हुआ बोलते हैं, कोई नाराज नहीं होना, सुनार और पति या पुत्र हीना स्त्री का अन्न आयु का नाश करता है। बाजार खोर का अन्न विष्ठा के समान है, ब्याज खोर का अन्न विष्ठा के समान है। कायर यज्ञ विक्रेता, बढ़ई मोची, व्यभिचारिणी स्त्री, धोबी बैद और चौकीदार, इन सब का अन्न भी खाने योग्य नहीं है। जिन्हें समाज या गांव ने दोषी ठहरा दिया हो, जो नाचने वाली के द्वारा अपनी आजीविका चलाते हो, और जिन्होंने अपने बड़े भाई के अविवाहित रहते हुए अपना विवाह कर लिया हो, उनका तथा बंदीजन और जुआरियों का अन्न नहीं खाना चाहिए। जो बाएं हाथ से लाया गया हो, जो अन्न बासी हो, जिस पर कोई मदिरा का छींटा भी पड़ गया हो, जो झूठा हो और जिसे कुटुंबियों से छिपाकर चुपचाप लाकर के रखा हो, वो अन्न खाने योग्य नहीं होता। जो पदार्थ आटे, ईख, शाक या दूध को बिगाड़ करके बनाए गए हों, वो नहीं खाने चाहिए। सत्तू, जौ की खीले तथा दही में मिले हुए सत्तू, ये अधिक देर हो जाने के बाद खाने योग्य नहीं रहते। खीर, खिचड़ी और मालपुए यदि देवता के उद्देश्य से न बनाए जाए तो नहीं खाने चाहिए, अर्थात भगवान के भोग लगा करके और फिर खाना चाहिए। गृहस्थ पुरुष देवता, ऋषि, अतिथि, पितर, कुल देवताओं को समर्पण के बाद ही भोजन करें, फिर भोजन में कोई दोष नहीं। खीर, खिचड़ी आदि सब उसे घर में भी सन्यासी के समान समझना चाहिए। धर्मात्मा पुरुष को चाहिए कि यश के लोभ से, भय के कारण अथवा अपना उपकार करने वाले को दान न दें। नाचने गाने वाले हों, हंसी मजाक करने वाले हों, भांड आदि हों, मदमत्त, उन्मत्त, चोर, निंदा करने वाले, गूंगे, तेजोहीन, अंगहीन, बोने, दुष्ट, कुलहीन या संस्कार शून्य, उन्हें दान न दें। जिसने वेदाध्ययन नहीं किया उस ब्राह्मण को दान देना ठीक नहीं है। विधिहीन दान देना और दान लेना दोनों के लिए ठीक नहीं है। ऐसा करने से दान देने वाले और दान लेने वाले दोनों की हानि होती है। जिस प्रकार खैर की लकड़ी या पत्थर की शिला का आश्रय लेकर समुद्र पार करना नहीं हो सकता, उसी प्रकार ऐसे दाता और गृहीता दोनों नरक में डूबते हैं। जिस प्रकार लकड़ी गीली होने पर अग्नि प्रज्वलित नहीं कर सकती, उसी प्रकार जिस दान लेने वाले में तप, स्वाध्याय, सदाचार का अभाव है, वो अच्छा नहीं माना जाता। जिस प्रकार मनुष्य की खोपड़ी में भरा हुआ जल और कुत्ते की खाल में भरा हुआ दूध अपने आश्रय के दोष से अपवित्र होता है, उसी प्रकार दुराचारी के संसर्ग से शास्त्राभ्यास भी दूषित होता है। जो ब्राह्मण वेदहीन है, अशास्त्रज्ञ होते हुए भी संतोषी है, दूसरों के गुणों में दोष देखने वाला नहीं है, उसे दया करके दान देना चाहिए। उन्हें देना शिष्टाचार है, अथवा ऐसा करने से मनुष्य पुण्यवान होता है। यह समझकर उन्हें कुछ नहीं दिया जाए ठीक नहीं है। जैसे लकड़ी का हाथी और चाम का हिरण, ये नाम मात्र के ही होते हैं, उसी प्रकार बिना पढ़ा हुआ ब्राह्मण केवल नाम मात्र का ही ब्राह्मण होता है। जिस प्रकार जलहीन कुआ और राख में किया हुआ हवन व्यर्थ होता है, उसी प्रकार मूर्ख को दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। दान लेने वाला मूर्ख तो दाता का शत्रु है, वह उसका धन हरण करता है और देवता एवं पितरों के हव्य कव्य का नाश करता है। ये सब मैंने आपको पूरा प्रसंग सुना दिया है। राजा युधिष्ठिर ने कहा, मैं राजा हूं और चारों वर्णों के धर्मों को विस्तार से सुना हूं। मैं जिस आपत्ति में फंस गया था, आप सबने कृपा करके मुझे उसमें से निकाला है। इन सब बातों को सुनकर मैं बड़ा हर्षित हुआ हूं। अब व्यास जी महाराज ने और भगवान श्री कृष्ण ने उनको आगे और कुछ बातें बताई, वो सब बातें कल की कथा में कहेंगे। कल से कथा लगभग 9 दिन तक तो सुबह का ही है, आगे की आगे देखेंगे। सुबह 8:30 बजे से
नारायण
श्रीमन् नारायण नारायण नारायण
श्रीमन् नारायण नारायण नारायण
श्रीमन् नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण।